दूसरा अध्याय। अब हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। यह एक बड़ी कठिनाई है। हम पक्षपात के जाल में सरलता से फंस सकते हैं। बस मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल से हमारे समूची सामूहिक संरचना का एक भाग है, और ये तब होता है जब हम कुछ व्यक्तियों को दूसरे से ऊपर आदर देने लगते हैं। आपको सतर्क रहना होगा कि कहीं आप इस जाल में फंस न जाएं। ऐसा कई बार होता है कि जब एक व्यक्ति अपना परिचय देता है तो वह कहता है, मैं फलाना डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? ओह, हम व्यक्तियों के साथ पक्षपात करते हैं। हमें व्यक्तियों के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रहे या मेरे पावों की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? आपको मसीही बुलाया जाता है, इसलिए एक व्यक्ति का धनी होने से उसके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने में सावधानी बरतो। या एक व्यक्ति का इसलिए अपमान न करो क्योंकि वह गरीब है। अब इस विषय में हम ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि हम एक व्यक्ति की सहायता इसलिए करते हैं क्योंकि वह एक बड़ी गाड़ी में है, और उस व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं जो एक पुरानी और सस्ती कार में हमारी चर्च में आता है, और दोनों की गाड़ी के टायर पंचर हो, मान लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक धनी व्यक्ति की सहायता करने के लिए इसलिए तत्पर होते हैं क्योंकि आप कहते हैं, अरे मुझे उसकी सहायता करने पर खुशी होगी, क्योंकि क्या पता उनकी सहायता करने पर हमें कुछ बख्शीश मिल जाए। यह पक्षपात अच्छा नहीं, जिसके हम दोषी ठहरेंगे। ये एक रोचक बात है कि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुन लिया और संसार के धन से नहीं, परंतु विश्वास में धनी किया। परमेश्वर के सामने धनी होने का मानदंड हमारे मानदंडों से बहुत भिन्न है। पहले स्वर्ण मुद्राएं हुआ करती थी जो एक मानदंड था। आजकल तो कोई मानदंड नहीं है। उन दिनों कहा जाता था कि सरकार आपके 10 रुपये के बदले उतनी ही कीमत के सोने को देने के लिए बाध्य है। फिर चांदी का मानदंड लाया गया। आजकल तो सिर्फ नोट है, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी भी बात में आपका ऋणी नहीं है। यह सच है, यह नोट सिर्फ कागज है, इसके बदले कुछ नहीं मिलने वाला, परंतु सोना स्वर्ग का मानदंड नहीं है। परमेश्वर जब एक व्यक्ति के हृदय को देखता है तो वो उस विश्वास और भरोसे को देखता है जो उसमें है। परमेश्वर कहता है, ओह, ये तो धनी व्यक्ति है, ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर जगत के कुछ नामी गिरामी लोगों को देखता है जो सारे ऐशो आराम के साथ जीते हैं, और कहता है, ओह, कितने दरिद्र धनी हैं ये सब, उनके पास कुछ भी नहीं। अब हमें भी परमेश्वर के समान उसी दृष्टिकोण से लोगों को देखना है। हमें धनी लोगों के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना है, परंतु हमें कंगालों की सहायता करने के प्रति चिंतित होना है। वास्तव में कंगालों की सहायता करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। धनी लोगों को वास्तव में ज्यादा सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंगाल ही होते हैं जिन्हें हमारी सहायता, हमारे ध्यान की जरूरत होती है। मैं ऐसा नहीं करता, और इसलिए मैं दोषी हो जाता हूं। परमेश्वर मुझ पर दया करे। 8वीं आयत में लिखा है, यदि तुम सचमुच राज्य व्यवस्था को पूरा करते हो। मुझे अच्छा लगता है राज्य व्यवस्था। क्या है ये राज्य व्यवस्था? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही राज व्यवस्था है। मुझे इसका शीर्षक अच्छा लगता है कि यदि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। एक बार एक जवान धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और इसी मामले में असफल हुआ। वो आया और यीशु के चरणों पर गिरते हुए कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं को मान। कौन कौन सी आज्ञाएं? व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना। ओ प्रभु, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूं, परंतु इसके अतिरिक्त मुझमें और किस बात की कमी है? अच्छा, यदि तुम संपूर्ण होना चाहते हो तो राज व्यवस्था का पालन करो। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। राज व्यवस्था का पालन करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ऐसा करना बड़ा ही कठिन बात है, बहुत कठिन। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना बहुत कठिन है, परंतु यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। नवी आयत में, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। ये आपकी और इल्जाम की उंगली उठाती है। दसवीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। आप एक उल्लंघनकारी हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा का आपने उल्लंघन किया है। तुम व्यभिचार न करना, अरे मैंने तो ये कभी नहीं किया। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, उफ, इसमें तो मैं चूक गया। यदि तुम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो व्यवस्था का उल्लंघन करते हो। आप व्यवस्था को भंग करने के दोषी ठहरेंगे और वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आप व्यवस्था को तोड़ने पर दोषी ठहरते हैं। यदि आप पूरी व्यवस्था का पालन करते हैं और सिर्फ एक आज्ञा में चूक कर जाते हैं, तो भी आप पूरी व्यवस्था के उल्लंघन करने में दोषी पाए जाते हैं। बारहवीं आयत में आगे लिखा है, तुम उन लोगों की ना ही वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। इस विषय को जरा एक क्षण के लिए सोचिए। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमसे यह भी कहा गया है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए एक नाप हो और आपके लिए बिल्कुल अलग। परंतु यदि मैं न्याय के दिन आपके विरुद्ध खड़ा हूं और आपकी और उंगली उठाकर दोषी ठहराऊं और कहूं, ओह तुम तो वाकई में घोर पापी हो, देखो ना तुमने क्या क्या किया, आपने जो कुछ किया होगा, हो सकता है आपको वह गलत न जान पड़े, परंतु मुझे ये घोर पाप लगता है क्योंकि मैं आपको इसके लिए दोषी ठहराता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसी नाप से नापा जाऊंगा। आपको बस इतना करना होगा कि आप तस्वीर को थोड़ा बदल दें और उस पर के चेहरों को बदल दें। अरे ठहरो, मुझे जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखने दो, ये तो मैं हूं, ये तो मैंने किया। आपको याद है दाऊद के पास खूबसूरत पत्नियां थी, फिर भी एक दिन छत पर टहलते हुए पास ही रहने वाली एक स्त्री को स्नान करते हुए उसने देखा। लालसा जगी, उस स्त्री के प्रति दाऊद की इच्छा जगी। वो अपने सेवकों को संदेश देकर भेजता है कि वो उससे कहें कि राजा उससे मिलना चाहता है। उस स्त्री के साथ वो व्यभिचार करता है। कुछ हफ्तों के बाद उसे एक पत्र मिलता है, प्रिय दाऊद, मैं गर्भवती हूं, और नीचे लिखा है बत्शीबा। तब दाऊद अपने सेनापति को यह संदेश भेजता है कि बत्शीबा के पति को छुट्टी में घर वापस भेज दो। उसका पति वापस आता है और दाऊद उससे कहता है, अच्छा तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है, युद्ध की स्थिति कैसी है? वो कहता है, ओह सब ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अपने पत्नी के साथ रात बिताओ, कल सुबह हम बात करेंगे। लेकिन वो अपने घर नहीं गया, वो दाऊद के राजभवन के द्वार में ही सो जाता है। सुबह दाऊद के सेवक ने आकर कहा, वो तो कल रात अपने घर नहीं गया, वो यही द्वार पर सो गया। तब दाऊद ने उसे बुला भेजा और पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? तुम्हारे पास एक सुंदर पत्नी है, तुम्हें घर जाकर अपने पत्नी के साथ रात बितानी चाहिए थी, अपनी पत्नी के साथ आनंद कर, तेरी समस्या क्या है? उस पर वो कहता है, मैं तो अपने संगी साथियों के बारे में सोच रहा था। वे वहाँ युद्ध के मोर्चे में हैं और मुझे ये शोभा नहीं देती कि मैं अपनी पत्नी के साथ आनंद करूं। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात न होती। सो दाऊद उसे मतवाला बना देता है। वह अपने सेवकों को हिदायत देता है कि उसके प्याले को मदिरा से भर दो, और इस प्रकार वह नशे में चूर हो जाता है। और दाऊद ने सोचा कि इस हालत में वह घर चला जाएगा और अपनी पत्नी के साथ रात गुजारेगा, परंतु वह उसके बजाय दाऊद के राजभवन में ही सो गया। सुबह सेवक दाऊद को बताते हैं उसने फिर रात ही बिताई। बाइबल कहती है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। यहां दाऊद अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है, वह भी बड़ी ही कायरता के साथ। वह अपने सेनापति योआब के पास गोपनीय संदेश भेजता है। उसमें यह लिखा था कि ऊरिया को युद्ध के मोर्चे के बिल्कुल सामने रखना, और जब युद्ध भीषण हो जाए तो उसे वहीं छोड़कर लौट आना। इस प्रकार दाऊद ने जैसी आज्ञा दी वैसे ही योआब ने किया, और ऊरिया युद्ध में मारा गया। दाऊद को खबर मिली कि वह युद्ध में मारा गया। दाऊद ने बतशेबा को अपने पत्नी के रूप में अपना लिया। उसने सोचा कि वह अपने गलती को अच्छी तरह से छुपा सकता है। बतशेबा को एक बेटा उत्पन्न हुआ। दाऊद एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति के रूप में लगने लगा। देखो यहाँ बतशेबा उसका पति युद्ध में मारा गया, और अब दाऊद उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लेता है ताकि उसके बेटे को अनाथ होने से बचा सके। क्या यह प्रशंसनीय बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाथा नबी दाऊद के पास आता है। दाऊद ने सोचा कि उसके पाप के बारे में कोई नहीं जानता। उसने सब कुछ बड़ी ही सफाई से छुपा लिया था। नाथान उसके पास आता है और कहता है, दाऊद एक व्यक्ति तुम्हारे राज्य में है जो बहुत ही धनी है। उसके पास धन इतना है कि वह खर्च भी कर दे तो अभी खत्म न होगा। बहुत सी भेड़ बकरियों का झुंड। वह एक ऐसे निर्धन व्यक्ति के पड़ोस में रहता था जिसका एकमात्र संपत्ति एक भेड़ की छोटी बच्ची थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। वास्तव में वह उसकी दुलारी थी। वह उसके गोद में सोती थी। वह घर में ही सोती और इस निर्धन व्यक्ति के टुकड़ों में से खाती थी। और एक दिन धनी व्यक्ति के पास एक मेहमान आया। उस धनी व्यक्ति ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि पड़ोस के निर्धन व्यक्ति के भेड़ की छोटी बच्ची को जबरन लाएं और उसे मारकर उसके लिए अच्छा भोजन तैयार करें। तब दाऊद का कोप भड़का और उसने नाथान से कहा, वह धनी व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु का दंड पाएगा। नाथान कहता है, दाऊद तू ही वो मनुष्य है। तुम्हारे पास इतनी पत्नियां थीं, फिर भी तूने पराई स्त्री की ओर नजर उठाई, और ऊरिया तेरा पड़ोसी और उसका पति था जिसे तुमने मरवा डाला। तू ही वो मनुष्य है दाऊद। देखा आपने, यदि हम दया नहीं दिखाते हैं तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हम नापे जाएंगे। इसलिए अपने आप को दूसरों पर दोष लगाने के स्थान पर रखना हानिकारक होता है। दूसरों के कामों पर दोष लगाना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसने ऐसा क्यों किया? जानते हो उसने जो किया वो बड़ी ही भयंकर बात थी। अब सतर्क हो जाओ। आप अपने लिए एक नाप तैयार कर रहे हो जिससे आपको नापा जाएगा। मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दया नहीं दिखाता और जो बिना दया के दोष लगाता है उस पर दया नहीं की जाएगी। 13:14 में लिखा है, दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अब यहाँ इस विषय पर बहुत से लोग पौलुस और याकूब के परस्पर विरोधी उपदेश को देखते हैं। मैं नहीं। पौलुस सिखाता है कि उद्धार विश्वास के द्वारा होता है, केवल विश्वास से। पौलुस इफिसियों को लिखी हुई पत्री उसके दूसरे अध्याय की 8 में आगे लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। याकूब क्या कहता है? क्या विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? और उत्तर है, हाँ विश्वास उद्धार कर सकता है, एक सच्चा विश्वास। परंतु पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपका विश्वास सच्चा है, क्योंकि यदि आपका विश्वास सच्चा है तो वह कर्मों के द्वारा प्रकट होगा। दूसरे शब्दों में मात्र ये कहना है कि आपके पास विश्वास है इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, और ये काफी नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं, ओह मैं पूरे संसार से बढ़कर विश्वास रखता हूँ। झूठी बात। किसी के पास सारे संसार से बढ़कर विश्वास नहीं है। ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं होता। यदि आप विश्वास करते हैं कि फला बातें ऐसी ही हैं, तब आप उसी विश्वास के आधार पर अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार आपका जीवन आपके विश्वास या आपके भरोसे का प्रमाण देता है। यह कहना कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और यह कि परमेश्वर सर्वोच्च है और यह भी कि परमेश्वर का आपके जीवन में प्रथम स्थान है, तब इससे यह समझा जाता है कि कुछ ऐसे प्रमाण होंगे जो उक्त तथ्य को प्रमाणित करेंगे जिसकी आपने पहले घोषणा की थी, और जो कर्म आप करते हैं उससे आपका विश्वास प्रमाणित होता है। और ये कहना कि आपके पास विश्वास है परंतु उसमें मेल खाने वाले कोई कर्म नहीं, तो ये पूरी तरह से गलत है। आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप वास्तव में विश्वास में नहीं चल रहे हैं। यदि आप वाकई विश्वास में चलते हैं तो आपका कर्म इस सच्चाई की पुष्टि कर देगा। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं, यह उद्धार नहीं कर सकता है। 15वीं आयत में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दो, तो उससे क्या लाभ? उन्होंने न तो उसका देह गर्म किया और वे न उसकी पेट को भूख को भर पाए। 17वीं आयत में आगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। सो ये मात्र एक घोषणा ही नहीं है, ये एक ऐसी घोषणा है जिसके पीछे कुछ तथ्य है। इसके पीछे का प्रमाण मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य है। अब कर्म मेरा उद्धार नहीं कर सकता, ये मात्र प्रमाण देते हैं कि मेरे पास उद्धार का विश्वास है। यदि जिसकी मैं घोषणा करता हूँ उसके अनुसार का कर्म मैं न करूँ तो मेरे पास उद्धार का विश्वास नहीं है, बस घोषणा मात्र है। मुंह से की गई पुष्टि काफी नहीं है और उससे कुछ नहीं होने वाला। अब बहुतेरे लोग गलतियां करते हैं, आगे आकर वे पाप के अंगीकार की प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो वे उसी प्रकार का जीवन जीते हैं जिसमें वे यही गलतियां फिर से दोहराते हैं। वे कहते हैं, अरे हाँ, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने आगे आकर पापियों की क्षमा याचना की प्रार्थना की। नहीं नहीं भाई, पापियों के लिए क्षमा याचना की प्रार्थना से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह में का जीवित विश्वास ही आपके जीवन में वास्तविक बदलावों को लाएगा और इसका प्रमाण आपके कर्म में प्रकट होगा, जो आपके विश्वास का प्रमाण होगा। आपका कर्म आपके द्वारा की जाने वाली घोषणा की सच्चाई के अनुसार हो और उसके साथ मेल खाए। 19वीं आयत में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थराते हैं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कौन नहीं करता, कुछ मूर्खों को छोड़कर। बाइबल कहती है ना कि मूर्ख वही है जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। सो आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ये एक बात को प्रमाणित करती है कि आप मूर्ख नहीं है, परंतु इससे आपका उद्धार नहीं होता। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर पर विश्वास करती हैं और संभवत उनका विश्वास उस पर आपसे बढ़कर दृढ़ है। उन्होंने यीशु से मरकुस पहले अध्याय की 24वीं आयत में कहा, हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। सो आप भी कहते हैं, अरे मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है, तो इससे क्या हुआ? क्या आपने अपना जीवन उनके प्रभुत्व के प्रति समर्पित किया है? क्या आप उसके कार्य करते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? तो देखा आपने, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो आप कहते हैं, ओ प्रभु, ठीक है, पर कहने से कुछ नहीं होने वाला। यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। याकूब आपसे यही बात कहता है, यदि आप कहें कि मुझे विश्वास है तो कहना काफी नहीं, आपको दर्शाना होगा, क्योंकि ये आवश्यक है कि मेरे जीवन के कार्य जिस विश्वास की मैं घोषणा करता हूँ उससे मेल खाएं। यदि मैं विश्वास करता हूँ कि इस कमरे में बम रखा गया है, जो 2 मिनट के अंदर फटने वाला है और मैं यहाँ खड़ा होकर बड़ी शांति के साथ आपसे घोषणा करूं, जानते हो एक बड़ा बम 2 मिनट में यहाँ फटने वाला है जो इस कमरे के परखच्चे उड़ा देगा। जो लोग ऐसा करते हैं वे सचमुच भयंकर हैं। जिस व्यक्ति ने यह बम रखा है उसके दिमाग की दुष्टता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे क्यों हमारा विनाश करना चाहते हैं? आप कहेंगे, अरे आपको वास्तव में विश्वास नहीं है कि यहाँ बम है। क्यों? क्योंकि जो विश्वास के साथ घोषणा कर रहा है वो वहीं खड़े खड़े घोषणा कर रहा है, यानी कि आपकी घोषणा आपके कार्य से मेल नहीं खा रही। पर यदि मैं द्वार के बाहर दौड़ता हुआ जाऊं और कहूं, यहां से बाहर निकलो, जानते हो बम 2 मिनट में फटने वाला है, तब आप इस बात पर ज्यादा विश्वास करने का रुझान दिखाएंगे। कम से कम मुझे विश्वास है कि जिसे मैंने आपसे कहा है अब मेरे कार्य से उस घोषणा से मेल खा रहे हैं जिस पर मेरा विश्वास है। अब यही समान रूप से सत्य है। आप कहते हैं, हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ वगैरह। अच्छा, पर क्या आपका कार्य उससे मेल खाता है? क्या आपके कार्य वास्तव में ये प्रकट करते हैं कि यीशु ही आपके जीवन का प्रभु है? क्या ये तथ्य आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य से प्रकट होता है? यही बात तो याकूब कहता है, अपने कथन पर निर्भर न रहे, उन कार्यों को भी देखें जो ये प्रकट करती है कि जो आप कह रहे हैं वो उस पर आप सचमुच विश्वास करते हैं कि नहीं। 20वीं आयत में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? ये वास्तव में जीवंत नहीं है, ये एक जीवित विश्वास नहीं है, ये उद्धार देने वाले विश्वास नहीं है। 21वीं आयत में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? आप देखें कि उसका कार्य उसके विश्वास के साथ मेल खाता है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो विश्वास करता था कि इसहाक के द्वारा परमेश्वर एक राष्ट्र को खड़ा करेगा, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाया जाएगा। अब उसका इसहाक की बलि चढ़ाना ही एक ऐसा प्रमाण था कि वह परमेश्वर के वचन पर कितना दृढ़ता से विश्वास करता था। उसको यहाँ तक विश्वास था कि परमेश्वर यदि जरूरत पड़े तो इसहाक को मरे हुओं में से जिला सकता है ताकि अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे। सो इस प्रकार उसका कार्य उसके विश्वास के अनुसार था। 22वीं आयत, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कार्यों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। मिलकर कार्य कर रहे थे, जैसे कि उसके विश्वास का परिणाम कर्म था, वैसे ही विश्वास का परिणाम हमारे जीवन में हमारे कार्यों से मेल खाता हुआ है। 22वीं आयत में आगे लिखा है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्म विश्वास का प्रमाण है। 25वीं आयत में आगे, वैसे ही राहाब वैश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जब आपकी आत्मा आपके देह को छोड़ देती है तो आपकी देह मर जाती है, वैसे ही आपका विश्वास आपके कार्यों के साथ मेल नहीं खाता तो वह सच्चा विश्वास नहीं है, वह मरा हुआ है। ऐसा मरा हुआ विश्वास आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको उद्धार नहीं दिला सकता। मरा हुआ विश्वास किसी का भी उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा सिर्फ जीवित विश्वास और जीवित प्रभु ही कर सकता है। और ये जीवित विश्वास मेरे जीवन में होने वाले कर्मों के द्वारा प्रदर्शित होता है जो समन्वय और मेल रखते हैं उससे जिसकी मैं घोषणा करता हूँ कि यह सत्य है। जो मैं घोषणा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि यह सत्य है। विश्वास का जीवित रहना कर्मों के मेल रखने ही से होगा। इसलिए आइए हम अपने आप को जांचें और देखें कि क्या हम विश्वास में हैं, ऐसा सच्चा विश्वास जो उद्धार दिला सकता है। सिर्फ प्रेरितों के उपदेशों को शब्द आडंबरों में बोलना ही नहीं है, मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मेरे जीवन के कार्य मेरे विश्वास के साथ मेल रखें, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी सहायता कर कि हम सचमुच वचन के अनुसार चलने वाले बने, न कि सिर्फ सुनने वाले। हम न सिर्फ विश्वास का मुंह से समर्थन करें परंतु उस विश्वास को अपने जीवन के रवैये और कर्मों के द्वारा प्रदर्शित करें। प्रभु सहायता कर कि हम धोखे में न पड़े। यीशु के नाम में आमेन।